उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मनुष्य के जीवन में शांति मुक्ति और भक्ति की ओर विकास का जो क्रम है उसमें सबसे आवश्यक बात मुझे यह मालूम होती है कि हमारे जीवन में उस ओर आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिए और कोई योग्यता अपेक्षित नहीं है। अभी जैसा कि हम लोगों ने संत वाणी में सुना, वो क्या सुना कि यदि आप शांत होना, मुक्त होना, भक्त होना नहीं चाहते हैं तो फिर अपने लिए कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जब इस जीवन की आवश्यकता अनुभव करेंगे तो उसी से बड़ा भारी विकास आरंभ हो जाएगा। अब देखिए, ये अपने लोगों की एक दशा है, ये जीवन नहीं है, ये दशा है। क्या दशा है कि आंखों से जो दिखाई देता है उसमें हम लोगों का विश्वास भी बन जाता है और उसके प्रति एक खिंचाव भी बन जाता है। विश्वास भी बनता है, खिंचाव भी बनता है। तो यद्यपि हम इस बात को जान रहे हैं, केवल इंद्रियों के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर भी हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जिन शरीरों के माध्यम से संसार में अनेक प्रकार का सुख भोग किया मैंने, वह शरीर दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और किसी न किसी क्षण में ये मेरा साथ छोड़ देगा। इस बात की जानकारी हम लोगों को है कि नहीं है? है। अब कठिनाई क्या हो जाती है, कहीं भी जाओ सत्संग में और किसी मजहब के मानने वाले क्यों न हो, कठिनाई इतनी सी हो जाती है कि देखा हुआ संसार एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है। फिर भी वही संसार अपने लिए जीवन का आधार मालूम होता है और जो परमात्मा एक क्षण के लिए भी किसी से अलग नहीं होता, वह परमात्मा अपने से बहुत दूर छिपा हुआ और अप्राप्य मालूम होता है। ऐसा लगता है कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। तो स्वामी जी महाराज ने मानव जीवन की एक समस्या हम लोगों के सामने रखी और ये कहा कि थोड़ा सोच करके देखो तो तुम। क्या सोचे? ये सोच करके देखो कि जो संसार आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ न होगा, वही संसार तुमको सत्य मालूम होता है। और जो परमात्मा कभी भी किसी से अलग नहीं होता है, न हुआ न होता है न होगा, वही परमात्मा अपने से बहुत दूर मालूम होता है। तो तन में विश्वास करना, धन में विश्वास करना, कुटुंबियों में विश्वास करना, ये है विवेक विरोधी, लेकिन यही अपने को सत्य मालूम होता है, सहज मालूम होता है। और परमात्मा में विश्वास करना है सत्य, और वही अपने को कठिन लगता है। तो जो आज तक किसी को मिल न सका, मुझे भी कुछ मिला नहीं लेकिन मिला हुआ सा लगता है, और जो आज तक कभी अलग हुआ नहीं लेकिन वही अपने से बहुत दूर मालूम होता है, ऐसी दशा है कि नहीं है? है। जो चला गया वो मालूम होता है कि मेरा था, कितना बड़ा भ्रम है। जो पलक मारते आंखों के सामने से ओझल हो गया, एक माँ मुझसे बात कर रही थी, प्रिय वियोग की कथा कह रही थी, तो ये कह रही थी कि ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों बैठ करके अभी बात कर रहे हैं और किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, ऐसे झट से प्राणांत हो गया। तो ये मेरी आंखों देखी घटना है। इस अनिश्चित को मैंने अपने द्वारा अनुभव किया है, फिर भी हम उसी को सत्य मानने के लिए राजी हैं और उसी की अनुपस्थिति में संपूर्ण व्यक्तित्व जो है अस्त व्यस्त हो गया। इसका नाम है असत का संग। अब अनुभवी जन क्या सलाह देते हैं? अनुभवी जन सलाह ये देते हैं कि भाई जो तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया, पलक मारते ही जिसके संयोग का अंत हो गया और बड़ा ही दुखद कठिन वियोग सामने आ गया, उसको तुम अब से सही अपना मानना बंद करो। पता चल गया ना कि मेरा होकर रह न सका, तो जो मेरा होकर रह न सका उसको मेरा कहना छोड़ दो। अच्छा, मेरा कहना छोड़ दे लेकिन 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस एक साथ रह करके जो बिताया और अपने जीवन का एक संबल जिसको बनाया, उसकी याद कैसे मिटेगी? रह रह के उसकी याद आती है, इसका क्या करें? तो इसके बारे में यह बताया गया कि जब जब मृतक प्राणी की याद आती है और उसके वियोग में अपने को सब कुछ निराधार लग रहा है, तो उसकी याद आने पर उसे अपना न मानते हुए भी उसकी कल्याण कामना रखो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे भी मोह मुक्त कीजिए, उस दिवंगत आत्मा को भी मोह मुक्त कीजिए, उसको अपनी शांतिमयी गोद में स्थान दीजिए, मैंने बड़ी भूल की कि बनने बिगड़ने वाले को अपना करके स्वीकार किया था, इस स्वीकृति से हम दोनों मोह के बंधन में जकड़ गए, हे परमात्मा हम दोनों को मोह के बंधन से मुक्त कीजिए, मुझे भी शांति दीजिए, उन्हें भी शांति दीजिए, जहाँ रहे आनंद से रहे, जहाँ रहे शांति में रहे। ऐसा जब जब उस बिछुड़े हुए प्रियजन की याद आती है, तब तब उनके कल्याण के लिए अपनी ओर से प्रार्थना निकलनी चाहिए हृदय से। इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि जब अपना जीवन मोह मुक्त हो जाएगा तो मृतक प्राणी का जीवन भी मोह मुक्त हो जाएगा। जब अपने को शांति मिल जाएगी तो बिछड़े हुए को भी शांति मिल जाएगी। यह अनुभवी जनों का अनुभव है, यह जीवन का विज्ञान है, इसके अनुसरण से कल्याण होता है। अब दूसरा पक्ष ले लिया जाए, जो सदा सदा से अपना है, जिसने कभी भी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं, उसको मैं अपना मानूं, बड़ी सच्ची बात है, बड़ी सीधी बात है, बहुत आवश्यक बात है। तो अब कठिनाई क्या होती है कि हम लोग जब उस बिना देखे बिना जाने सर्वव्यापी परमात्मा को अपना मानना आरंभ करते हैं, गुरु की वाणी पर विश्वास करके या वेद शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करके, अगर हम लोग उसको अपना मानने का साहस करते हैं तो भीतर से बड़ा निराधार लगता है कि देखा है ही नहीं, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है और कैसा है और क्या करता है और हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मानना भी चाहते हैं हम उनको और माना जाता भी नहीं है, डर लगता रहता है, संदेह होता रहता है कि क्या करें कैसे माने। तो समय समय पर बैठ करके अकेले में भी मैंने सोचा और स्वामी जी महाराज से भी बहुत बातचीत की तो मुझको एक खास बात मालूम हुई, और खास बात ये मालूम हुई कि ईश्वर में विश्वास करने का प्रश्न जब सामने आवे तो मत पूछो कि वो कहाँ है और कैसा है और क्या करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जब हम पूछेंगे भीतर में ये तर्क और बुद्धि को प्रश्रय देंगे तो कभी भी मान नहीं पाएंगे। एक बात, इसलिए बुद्धि मत लगाओ। दूसरी बात क्या है, जब मेरे सामने ऐसा प्रश्न आया तो मैंने यूं सोचा कि अच्छा हुआ कि भगवान देखे हुए जगत में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना जो कुछ मैंने देखा सुना वो सब मेरी मुट्ठी में से निकल गया। जितना मैंने देखा सुना समझा पकड़ने की कोशिश की वो सब मेरे हाथ में से निकल गया। बड़ा परिश्रम करके पढ़ना लिखना किया, बड़ा बढ़िया रिजल्ट पाया, बड़ी अच्छी नौकरी मिली, बड़ा बढ़िया पद मिला, मैं वही हूँ। और वृद्धावस्था आने के कारण से मेरी आवश्यकताएं बढ़ गई, अब किसी की सहायता चाहिए, अब अधिक आराम चाहिए, अब शरीर को अधिक संभाल चाहिए। तो जब शरीरों की आवश्यकता बढ़ गई तब आवश्यकता पूर्ति की सामग्री जो संसार में दी थी वो छूट गई। मजा आ गया ना? वृद्धावस्था आई, अब ज्यादा सहारा चाहिए तो संसार ने क्या किया कि युवावस्था में जो सब सहारे दिए थे वो सब वापस ले लिया। नहीं नहीं नहीं, अब तुम हमारे काम के नहीं हो, अब कुर्सी छोड़ दो, अब ये धन तुम छोड़ दो, अब इस कुर्सी पर हम किसी युवावस्था वाले को बैठाएंगे और ये धन संपत्ति सम्मान और सुविधा को हम उसको देंगे, तुम हमारे काम के लायक नहीं रहे, अब तुम जाओ। क्या मुसीबत बाबा, अब क्या करें। तो ये सब छूटता गया, सब छूटता गया, और जो थोड़ा बहुत शेष बच गया है वो भी छूट जाएगा। इन बातों को हम सब लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो मेरे सामने जब प्रश्न आया तो मैंने भला मनाया, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ कि मेरे परमात्मा इस देखे हुए जगत का दृश्य बनकर मेरे सामने नहीं आए, अच्छा किया उन्होंने। अगर दृश्य बनकर आ जाते तो जैसे सब दृश्य मेरी आंखों के सामने से भाग जा रहे हैं वैसे वो भी भाग जाते, तो फिर तो मैं अकेली रह जाती, तब तो मेरा वही हाय रह जाता कि अब किसका सहारा पकड़ें। अब कौन ऐसा है असल आधार कि जिसको ले करके मैं सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाती। तो स्वामी जी महाराज के सिखाने समझाने से थोड़ा साहस तो आया था, और उसी साहस के बल पर मैंने ये सोच लिया कि अच्छा है भगवान आप छिप करके रहे, आप अदृश्य होकर रहे, आप देखने सुनने में नहीं आए, तो मेरे लिए एक रास्ता बच गया। क्या रास्ता बच गया कि जो देखने सुनने में नहीं आता है और जो देखे हुए दृश्य के समान मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकता है लेकिन सदा सदा से है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि है, संत कबीर ने कहा कि है, मीरा जी ने कहा कि है, क्राइस्ट ईसा मसीह ने कहा कि है, पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि है, तो मैं क्या करूं? मैं जानती तो नहीं हूं लेकिन इन सब संत महापुरुषों ने कहा कि है, तो मेरे लिए एक चांस बच गया है कि वो जो परमात्मा देखने सुनने समझने में नहीं आता है लेकिन इतने सब संत महापुरुष कह रहे हैं कि है, वेद शास्त्र में लिखा हुआ कि है, तो एक बार उसको मान करके देखो कि क्या होता है। ये श्रद्धा भक्ति की बात नहीं है, ये हारे हुए जीवन की कथा है। संसार के सब दृश्य चलचित्र की भांति आंखों के सामने आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं, और जिन आंखों से मैंने संसार को देखना आरंभ किया था वो आंखें भी मेरा साथ छोड़ रही हैं। जी छोड़ रही है ना। एक दिन ऐसा था कि रात्रि के समय बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म ड्राइंग पेंटिंग मैं कर लेती थी, और आज का दिन है कि खुले प्रकाश में दिन के समय बैठ करके दो चार चिट्ठियां लिख दूं तो सिर दर्द से परेशान हो जाती हूँ। तो जिन आंखों से मैंने देखे हुए संसार का सुख लिया था वो देखा हुआ संसार तो धीरे धीरे खिसक ही गया, जिन आंखों से देखा करती थी वे आंखें भी छोड़ रही हैं मुझको। तो भला हुआ कि परमात्मा जो है वो देखे हुए में शामिल नहीं रहा। इसलिए डरिए मत, सोचिए मत कि नहीं दिखाई देता है तो उसको कैसे माने। मान लीजिए, मेरी तरह झक मार के मान लो, अथवा अपने हृदय की श्रद्धा भक्ति प्रेम के आनंद से मान लो, किसी भी तरह से मानो, उसको मानना पड़ेगा जरूर। और अगर उसको नहीं मानेंगे हम तो फिर हमारे जीवन में मानने के स्वभाव का जो उपयोग है वो कुछ नहीं रह जाएगा। तो माना, अब फल क्या हुआ? तो बड़ा अद्भुत फल है। परमात्मा देखने में नहीं आया, उसने आ करके मेरे सामने खड़े होकर कभी कहा नहीं कि मैं परमात्मा हूं और मुझको मान लो तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा, ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन संत महापुरुषों की वाणी सुनकर, गुरु के वाक्य का आधार लेकर, जिन साधकों ने बिना देखे बिना जाने परमात्मा को माना, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया कि अब बड़ी विचित्र बात हो गई। ऐसा नहीं कि धनुषधारी बन करके सामने खड़ा हो गया, कि मुरली मनोहर बन के सामने खड़ा हो गया, सो नहीं, बड़ा भारी परिवर्तन उसके जीवन में आया कि अब अपने को निश्चिंत और निर्भय करने के लिए आंखें खोल करके संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या हो गया कि शांत हो रहो, चुप रहो, खुली आंखों से जगत को देखो अथवा बंद आंखों से अपने भीतर समा जाओ। वह जो नित्य निरंतर अपने ही में विद्यमान रहने वाला परमात्मा है, वो अपनी उपस्थिति का आभास तुमको दे देगा। देखो, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि तुम्हारा परमात्मा तुम्ही में विद्यमान है, तो अपने गुरु की वाणी पर विश्वास किया तुमने। अब देखो, तुम्हारे गुरु ने जो कहा था उसी के अनुसार मैं तुम्हारे साथ विद्यमान हूँ। इतना प्रत्यक्ष और इतना जोरदार आश्वासन उस परमात्मा की ओर से विश्वासी साधकों को मिल जाता है। अनाथपन का दुख सदा के लिए खत्म हो जाता है। जागृत में, स्वप्न में कभी भी ईश्वर विश्वासी को ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ, ऐसा कभी नहीं लगता है। कभी भी उसे अपने लिए अन्य सहारे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं कहां जाऊं, ये सब उसको नहीं सोचना पड़ता। क्यों नहीं सोचना पड़ता कि प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा उसको कब मिलेंगे ये तो परमात्मा जाने, लेकिन अज्ञात रूप से परमात्मा की विभूतियां उस विश्वासी साधक के जीवन में इस प्रकार से भरने लग जाती हैं कि वो समझता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन आंखें बंद करके अकेले में, एकांत में उसे अपने में ऐसा एक विशेष बल मालूम होता है, ऐसी एक विशेष सरसता मालूम होती है कि वो उसी में मस्त रहने लग जाता है। तो मेरा ऐसा विश्वास बन गया कि आदमी को अपने आप में जब तक वह बल और वह विश्वास और वह रस प्रकट नहीं मिलेगा, तब तक उसको दुनिया के किसी आधार पर निश्चिंतता और शांति मिल जाए अथवा वियोग जनित पीड़ा खत्म हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। भले कुछ काम करके अपने को बहला लो, भले कुछ स्थान का परिवर्तन करके अपने को बहलाने की कोशिश करो, भले बुद्धि के बल पर, बौद्धिक और मानसिक योग्यता के बल पर अपने को धीरज देने की कोशिश करो, कुछ भी करो, मोह जनित पीड़ा जो है, प्रिय वियोग का दुख जो है, वो परमात्मा के प्रेम रस से ही मिटता है और किसी प्रकार से मिट नहीं सकता, जीवन भर नहीं सकता। बुद्धि का जो बल है वो स्वतक पहुंचता नहीं है। मैंने भी बुद्धि का बड़ा सहारा पकड़ा था, अपनी बुद्धिमता का बहुत बल था मुझको, और समझा बुझा करके मैं अपने को ठीक कर लूंगी, इसमें मेरा भी बड़ा विश्वास था किसी समय, लेकिन समझाने बुझाने पर भी काम नहीं बना। सबसे उच्च शिक्षा में सबसे आखिरी परीक्षा दे करके मैं विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से बाहर होने लगी तो मेरा हृदय हाहाकार करने लगा। मुझे भीतर से ये आवाज आने लगी कि 14 वर्षों का समय अध्ययन में लगा करके देह को ढूंढ डाला मैंने, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए और दर्शन के लिए बहुत कुछ किया, और आखिरी प्रायोगिक परीक्षा दे करके बाहर निकलने लगी तो हृदय रोने लगा। क्या मालूम हुआ कि 14 वर्ष का सारा परिश्रम बेकार गया। क्यों? क्योंकि बौद्धिक विकास से जीवन का अभाव नहीं मिटता है, भीतर सब सूना सब अंधकार। तो पटना यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसमें से मैं बाहर निकल गई थी तो एक बार मैंने पीछे फिर करके विश्वविद्यालय को प्रणाम किया और मैंने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो अपनी जगह पर ठीक हो भाई, आबाद रहो, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। आ गई, बौद्धिक विकास से जीवन का अभाव नहीं मिटता है, बौद्धिक विकास से सदा सदा का अचल आधार आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि बौद्धिक तत्व जो है वो भौतिक तत्व है। ईश्वर विश्वास के बल पर जब अलौकिक ईश्वरीय विभूतियों का प्राकट्य अहम रूपी अणु में से होने लगता है तब अपनी असमर्थता का नाश होता है, चिंता और भय का नाश होता है, नीरसता का नाश होता है, तब उस रस को लेकर के व्यक्ति सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, और हम सब भाई बहनों को जीवन के उस मौलिक सत्य में आस्था रखनी चाहिए। नहीं तो आप देखिए ऊंचे से ऊंचे सुख की घड़ियों को भी आपने अनुभव किया है। हरेक भाई बहन को प्रकृति के मंगलमय विधान से जीवन में अनेक बार अच्छे अच्छे सुख के अवसर आते हैं और आप ही कहकर सुनाते हैं कि उन सुख की घड़ियों में भी अपने को सूझता है कि भाई ये तो आने जाने वाला है, इसमें तो जीवन नहीं है, तो जो सदा सदा के लिए रहने वाला है उसको पकड़ना है, सूझता है। ये चेतना मानव मात्र को उस परमात्मा ने दिया है, इसलिए सूझता है आदमी को। और मैंने तो बड़ी बड़ी प्रतिकूल घड़ियों में इस चेतना को अपने को थामते हुए देखा है, पाया है। इस आधार पर अपने आत्मीय भाई बहनों की सेवा में मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि सुख भरी परिस्थिति है तो क्या और दुख भरी परिस्थिति है तो क्या, परिस्थितियों को सत्य मत मानो, बड़ा धोखा होगा, अवसर निकल जाएगा, परिस्थितियां संसार की संसार में रह जाएंगी और जब सब कुछ छूटने लगेगा तो अपने को अकेला और निराधार पा करके बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। परमात्मा ने अथवा हमारे विशेषों ने जिन्होंने हम लोगों को बनाया है वो इस दुनिया में आ करके निराधार हो करके हाय करके जीने के लिए और हाय करके मरने के लिए नहीं बनाया है। जो ईश्वरत्व जो ईश्वरीय विभूतियां सामर्थ्य के रूप में शांति के रूप में ज्ञान के प्रकाश के रूप में और प्रेम के रस के रूप में हमारे ही अहम रूपी अणु में से प्रकट होने वाली हैं, उन अलौकिक तत्वों को प्रकट होने देना हमारा आपका वर्तमान का परम पुरुषार्थ है। कभी कभी तो इतना आनंद आ जाता है मुझे किसी किसी संत के चरित्र को देख करके कि कैसे सीमित व्यक्तित्व के भीतर जब जब ईश्वरीय विभूतियां प्रकट होने लगती हैं तो इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि साधक स्वयं नहीं सोच सकता है यह सब कैसे हुआ, यह सब कहां से आया, यह सब किसने दिया। रमण महर्षि जी के जीवन का एक जीवन की एक घटना मैंने सुनी। वो तो अहम शून्य अनंत तत्व से मिले हुए महात्मा थे, बैठे रहते थे गुन गुन चुपचाप, बोलते बहुत कम थे। तो किसी दुखी परिवार ने आकर के सुनाया, दुखी परिवार तो संतों के पास भी आता है तो अपना दुखड़ा ही सुनाना पसंद करता है। स्वामी जी महाराज के पास तो कोई कोई आकर के सुनाता, महाराज ये झंझट हो गया, ये झंझट हो गया, ये झंझट हो गया, कहीं आर्थिक संकट है, कहीं लड़कियों के विवाह शादी का झंझट है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो पहले तो महाराज खूब हंसते और कहते भले आदमी साधु संत के पास जा करके मुक्ति भक्ति मांगनी चाहिए कि फकीरों के पास आकर के धन मांगते हो। तो पहले तो खूब हंस देते कि तुमने भी क्या सोचा है, अरे नंगे फकीर के पास आकर के तुम धन की बात करते हो, क्या बात है भाई, ऐसे करके हंस देते। भाई साधु संतों के पास आओ तो मुक्ति भक्ति की चर्चा करो, यहाँ आकर के भी तुम वही दुनिया के बखेड़ा ले आए हमारे पास, बिता देते। रमण महर्षि के संबंध में मैंने सुना कि उनके पास भी लोग ऐसे ही आते ही थे दुखड़ सुनाने के लिए। तो एक पति पत्नी आए और उनकी 12 वर्ष की लड़की बीमार थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। सूचना आई थी कि हालत बहुत खराब है, जल्दी वापस आओ। तो माता पिता ने संत को प्रणाम किया और कहा कि महाराज ऐसी ऐसी हालत है। तो सब लोग जानते थे इनका आशीर्वाद हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, वो सब बहुत तरह की बातें रहती हैं। तो सुन लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। वे लोग तो व्याकुल हैं वापस जाने के लिए, जल्दी जाएं, लड़की की हालत खराब है, जाके देखें। तो फिर दूर आके कहा कि महाराज ऐसी ऐसी हालत है। फिर महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया और इनकी व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। तो आसपास में बैठे हुए संत के भक्त जो होते हैं वो कुछ अपना विकांस लगाते हैं। तो एक उनका भक्त आगे बढ़ करके कहने लगा, महर्षि इन लोगों का ऐसा ऐसा हाल है, इन्होंने आपके सामने अपना दुख सुनाया है,
मतलब कुछ उत्तर दीजिए, कह दीजिए कि लड़की अच्छी हो जाएगी और क्या। इतना खुल के उन्होंने नहीं कहा, फिर उनकी याद दिलाई तो महर्षि ने उनके मस्तिष्क पर जब इतना जोर डाला गया तब उनके ध्यान में आया। तो उन्होंने क्या कहा कि महर्षि कुछ नहीं जानता है, महर्षि कुछ नहीं कर सकता, तुमने सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, उसको जो करना होगा करेगा, महर्षि कुछ नहीं जानता। अहम शून्य, अपने में अपना करके कुछ है नहीं। तो जिन संतों का जीवन अहम शून्य हो जाता है उनकी शक्ति परमात्मा की शक्ति से जुट जाती है, तो उधर ही का प्रकाश इस सीमित व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकाशित होता रहता है। उन्हीं का अनंत प्रेम प्रभु विश्वासी भक्तों के व्यक्तित्व के माध्यम से संसार में प्रसारित होता रहता है। तो प्रभु का अनंत ज्ञान, प्रभु का अनंत प्रेम, प्रभु की अनंत सामर्थ्य, प्रभु की अनंत शांति, यह सब भक्तों और संतों के व्यक्तित्व के माध्यम से संसार में प्रसारित होता रहता है, बढ़ता रहता है, बंटता रहता है, फैलता रहता है। स्वयं वे आनंदित रहते हैं और उनके नजदीक आने वाले, उनके संपर्क में आने वालों को भी आनंद की लहरियों का स्पर्श होता रहता है जो जीवन को बदलता रहता है। स्वामी जी महाराज कभी कभी ये व्याख्यान के द्वारा जो सत्संग की विधि है इससे कभी कभी उनका जी बड़ा हट जाता, खिन्न होता, तो कहते कि देवकी जी आज उपदेष्टा गुरु की आवश्यकता नहीं है संसार में, उपदेष्टा गुरु की जरूरत नहीं है, आदमी इतना दुर्बल हो चुका है, अपनी भूलों से आदमी आज इतना शक्तिहीन हो चुका है कि आज तो ऐसा गुरु चाहिए प्रभु के प्रकाश और उस अनंत के प्रेम से भरा हुआ, ऐसा गुरु चाहिए कि जिसके संपर्क में आने से ही साधकों की सब दुर्बलताओं का नाश हो। आज उपदेश का गुरु की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उपदेश को सुनकर, सच्ची बातों को सुनकर, उसको ग्रहण कर लेना और उस पर आचरण करना, इस प्रकार की सामर्थ्य ही आज भाई बहनों की ताकत कम हो। तो मैं कभी कभी बोलती, महाराज जी जब बैठे होते तो और भी निर्भीक होकर के और उत्साह में भर के और उनकी उपस्थिति से अपने जीवन का स्तर कुछ ज्यादा ऊंचा लगता था। जितना निर्विकार नहीं हो गया है उससे अधिक निर्विकारता मालूम होती थी। उनके पास बैठे रहो तो ऐसा लगता था कि मेरी तो सब समस्या खत्म हो गई, ऐसा लगता था। मैं अलौकिक जीवन में हूँ ऐसा अपने को भास होता रहता था। तो बड़ी जोर से और जोश में आकर के खूब ऊंची ऊंची बातें स्वामी जी में दोहराया करती और दोहराते दोहराते कभी कभी श्रोताओं पर दृष्टि जाती, जैसे कि क्लास में पढ़ाने की आदत, तो पढ़ाते समय लड़कियों की आंखें हम देखा करते थे कि देखें ये लोग समझ रही हैं कि नहीं, देखें ये लोग पकड़ रही हैं कि नहीं। शुरू में ऐसे ही सत्संग में भी बैठ करके मैं श्रोताओं को देखा करती कि देखेंगे उतनी ऊंची ऊंची बात मैं बोल रही हूँ तो सुनने वालों की पकड़ में आती है कि नहीं। और जब ऐसा लगता कि सब ऊंची ऊंची चर्चा तो ऊपर ऊपर हवा में जा रही है, श्रोताओं की पकड़ में नहीं आ रही है, उनकी आंखों में चमक नहीं दिखाई देती है, उनकी मुखाकृति में प्रसन्नता का एक्सप्रेशन सब नहीं आ रहा है, ऐसा लगता तो मेरा उत्साह थोड़ा सा ठंडा हो जाता। तो बाद में मैं सुनाती महाराज को, तो महाराज कहते कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम देख के क्यों बोलती हो? मैं तो नहीं देख के बोलता हूँ, तुम श्रोताओं को देख करके क्यों बोलती हो? और पीठ ठोकते बेटा बोले जाओ, जितने ऊंचे स्टैंडर्ड से बोलने का तुम्हारा जी हो सब बोल जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, जो जो उसका अधिकारी है वो तो ग्रहण कर ही लेगा, वो तो संभाल ही लेगा। और फिर कहते कहते कह जाते देवकी जी आज उपदेश था गुरु की आवश्यकता नहीं है तुम्हारा, आदमी इतना निर्बल हो गया है, इतना थकित हो गया है कि आज तो वैसा गुरु चाहिए कि जिसके संपर्क मात्र से श्रोताओं की सब निर्बलता खत्म हो। ऐसा होता है, नहीं होता है कोई बात नहीं है। दक्षिण भारत में किनम्मा करके एक बहुत ही विवेकवती महिला जब शरीरों की असंगता में मस्त हो गई हो तो उनको न घर बार का ध्यान रहा, न कपड़े का ध्यान रहा, न शरीर का ध्यान रहा, नंग धड़ंग जंगल में पड़ी रहती थी। दक्षिण के एक संत उनसे मिले, मानव सेवा संघ का उन्होंने खूब काम किया था हैदराबाद में, वो संत मिले तो कह दिया उन्होंने कि जाओ जाओ। तो उत्तर भारत वर्ष का एक प्रज्ञा चक्षु संत जब तुमको मिलेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो। तो वो बेचारे प्रतीक्षा में थे कि अब उत्तर भारत वर्ष से प्रज्ञा चक्षु संत आएंगे तो मेरा उद्धार होगा। जब स्वामी जी महाराज मिले तो वे बड़े आनंदित हो गए, कहने लगे मेरे गुरु ने आपकी शरणागति हमको दी थी महाराज, अब हमको संभालिए। तो वो बताते थे कि वो चिन्नम्मा जंगल में नंग धड़ंग पड़ी रहती थी, कुछ पता ही नहीं है कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, शरीर और संसार से कोई संबंध ही नहीं है, अपने निजानंद में मस्त है। तो लोग जब मिलने के लिए जाते तो पुरुष लोग तो दूर दूर बैठ जाते क्योंकि स्त्री शरीर और यूं ही पड़ा है जंगल में जमीन पर, तो दूर दूर बैठ जाते। स्त्रियां जाती तो अपने पास से कोई चादर उदर कपड़ा उपड़ा लेकर के जाती, उनके बदन पर डाल देती और अपनी ही मस्ती में कभी भी उठ करके बैठ गई तो एकदम से मिलने के लिए उनकी बात सुनने के लिए जो लोग गए होते सब में बड़ा हर्ष फैल जाता और कभी वो उनके मुंह से निकलता क्यों आया है, बोल तेरा क्या प्रश्न है। तो अनुभवी उनके पास जाने वाले अनुभव करने वाले लोगों ने बताया कि माँ के मुख से निकलता कि बोल तेरा क्या प्रश्न है, उनका पूछना और साधक के जीवन के सब प्रश्नों का हल होना एक साथ। जहां उन्होंने पूछा कि बोल तेरा क्या दुख है, जो भी दुख है सब खत्म। ऐसा होता है। तो ये मैं निवेदन कर रही थी कि बाहरी व्यवस्था के आधार पर हम व्यक्तित्व को संभाल लेंगे ये भूल है। मानसिक योग्यता के आधार पर हम जीवन को संभाल लेंगे ये भूल है। जब तक संसार में पद मर्यादा सुख सुविधा संगी साथी ये सब रहेंगे तब तक उस अविनाशी जीवन की मांग थोड़ी दबी हुई सी रहती है और समय पर जब वो मांग जागृत होती है तो आप सच मानिए कि विश्वास के आधार पर उस अनंत परमात्मा की आत्मीयता को स्वीकार करने मात्र से अपनी ही अहम रूपी अणु में से वे तत्व प्रकट होने लगते हैं कि जिनके आधार पर आदमी की आंखों में त्रिभुवन का वैभव धूल हो जाती है, सब का महत्व खत्म हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी बात का कोई महत्व जीवन में नहीं रह जाता। अगर वे किसी वस्तु को हाथ में लेते भी हैं तो जन कल्याण की भावना से लेते हैं। अगर वे आए हुए साथियों को साथ में रखते भी हैं तो उनके कल्याण के लिए रखते हैं, और अपने लिए न कोई साथी चाहिए, न कोई सामान चाहिए, न आंखें खोलकर संसार को देखने की आवश्यकता होती है और न आसन मुद्रा साधने के अभ्यास की आवश्यकता होती है। वो हृदय का जो भाव है, मैं कैसे कहूँ, मुझसे कहा नहीं जाता, अहम रूपी अणु में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसके प्राकट्य के साथ ही मनुष्य की सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जब तक उस ज्ञान और प्रेम तत्व का विकास नहीं हुआ तब तक सारी तैयारी मिट्टी है, कुछ काम में नहीं आता, किसी से कुछ काम नहीं बनता है। ऐसा मैंने संत वाणी में सुना और ऐसा मैंने अपने जीवन के भूतकाल को भी देखा है, संत मिलन से पहले की दशा भी देखी है और संत मिलन के बाद की दशा भी देखी है। उस आधार पर बड़ी सच्चाई और आत्मीयता के साथ मैं निवेदन करती हूँ कि और ज्यादा इधर उधर भटको मत, और बेशी समय तैयारी में अध्ययन में लगाओ मत। बहुत हो गया बाबा, अपने ही जीवन की घटनाओं का एक एक पन्ना पढ़ लो तो उसी से धरती आसमान तक यहाँ से वहां तक सब प्रकाश फैल जाए, सब कुछ उजाला उजाला हो जाएगा, सब दिखाई देने लग जाएगा कि कहाँ क्या है। तो जो त्याग्य है उसका त्याग करना ही है, जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करना ही है। जान बचेगी नहीं, कितना भी अपने को फुसलाते बहलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और किसी भी वेश में रहो और किसी भी परिस्थिति में रहो और किसी भी नगर में रहो, चाहे जहां रहो, अगर उस अपने अंतर्निहित अहम रूपी अणु में ही व्याप्त ज्ञान और प्रेम तत्व के विकास पर आपकी दृष्टि चली गई तो काम हो गया। ज्ञान के प्रकाश में भी बड़ा रस होता है और प्रेम के रस में भी बड़ा प्रकाश होता है। ज्ञानी जन भी प्रेम के रस से खराबोर होते हैं और प्रेमी जन भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विभूतियाँ उस अनंत परमात्मा की हैं। तो ज्ञान पंथ के साधक को भी सब कुछ मिलता है और प्रेम पंथ के साधक को भी सब कुछ मिलता है। अब जो पथ अपने को पसंद आवे जल्दी जल्दी पकड़ लो और छोटा छोटा कदम उठाना हमारा पुरुषार्थ है, और आगे बढ़कर मेरी दुर्बल बाहों को पकड़ लेना उस परमात्मा का स्वभाव। जी और आनंद लहन भाई साहब को मालूम है मंत्री की हैसियत से कि जब कभी कोई ऐसा आदमी पत्र लिखता है कि हम जितना खर्चा लगेगा देंगे और आश्रम में रहेंगे और वृद्धावस्था है हमारी सेवा के लिए नौकर रख दीजिएगा और एक बाथरूम लेट्रिन अटैच कमरा हमको दे दीजिएगा, हम बात करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग समय बिताने के लिए आश्रम में आने की चर्चा लिखते हैं तो उन लोगों को हम लोग हमेशा हाथ जोड़ के प्रार्थना करके क्षमा मांग लेते हैं। दूर से देखने में लगता है कि मानव सेवा संघ का आश्रम है तो भाई हमारी सेवा करो रखो, तो क्लेम तो उसका ठीक ही है। मानव सेवा संघ हेड लिख करके तुमने लगाया है बाहर और मैं एक मनुष्य हूँ और दुखी हूँ और हमको समय बिताने के लिए और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, हमारी देखभाल करने में हमारे बेटे बहू असमर्थ हैं, विदेश में रहते हैं, तो पैसा ले लो और हमको रखो। क्यों? क्योंकि तुमने मानव सेवा संघ लिख रखा है।
ये उपहार आश्रम नहीं है।
तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरह के प्रश्न भी हम लोगों के सामने आते हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कह डालता है कि आपने मानव सेवा संघ लिखा क्यों, जाने भी आप
लिटरली।
हाँ, तो ये मैं निवेदन कर रही हूँ कि अभी तक जितने लोग यहाँ आए स्वामी जी महाराज ने चुन चुन करके देख देख करके खास खास लोगों को प्रोत्साहन दिया रहने के लिए, तो जो भी कोई आया यहाँ रहने तो समय काटने नहीं आया और अधिक संख्या हम लोगों में से ऐसे साधकों की है कि जो इस कारण से नहीं आए कि उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसी असमर्थता से नहीं आए। क्यों भाई इस कारण से नहीं आए कि उनको रहने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं थी, कि उनको खाना नहीं मिलता था, इसलिए नहीं आए। जो भी कोई आया संत के प्रभाव से, उनके ज्ञान से, उनके प्रेम से, उनकी सद्प्रेरणा से अपने कल्याण के लिए आया, तो अब यहाँ आ करके हम क्या कर रहे हैं इस संबंध में अपनी ओर से मुझे कुछ नहीं करना है किसी को। उद्देश्य मैंने याद दिला दिया कि हम लोग आए इसलिए नहीं आए कि रहने की कोई जगह नहीं थी और इसलिए नहीं आए कि रोटी का इंतजाम नहीं था। सुंदर भाई जी, खाना नहीं मिल रहा था कानपुर में, तो ऐसी बात नहीं थी। मानव सेवा संघ का आश्रम इसलिए है ही नहीं है कि जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है उसको रख दो, जिसको खाना नहीं मिलता उसको खाना ले दो। इस किस्म की सेवा की भावना स्वामी जी महाराज की थी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग इस प्रकार की असमर्थता में पड़े हैं वो मेरी सेवा के अधिकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये अधिकारी हैं लेकिन हमारी शक्ति सीमित है, हमारी परिस्थिति सीमित है। तो जिस विशेष उद्देश्य से ये आश्रम बनाया गया उस उद्देश्य के भीतर अपाहिज और असमर्थ और भूखे और मंगों को रखने के लिए अभी सुविधा नहीं है। किसी दिन हमारे पास युवक साधकों की इतनी श्रेणी आ जाए कि वे समाज के अपाहिज और भूखे और नंगे की सेवा के द्वारा अपनी चित्त शुद्धि पसंद करें, तो हमारे पास जन और धन आ जाए तो हम और आश्रम खोल देंगे और बड़ी जगह लेकर के मकान बना देंगे और असमर्थों को रख करके सामर्थ्यवान साधकों से सेवा करा देंगे। अगर अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम कर सकते हैं। तो सेवा पाने में वे अनाधिकारी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह आश्रम तो उन जागृत साधकों के लिए बनाया गया कि जो अपनी असमर्थता के कारण से समय काटने नहीं आए, जो बची खुची सामर्थ्य लेकर के आए
कि हम सामर्थ्य का सदुपयोग करेंगे, सेवा करेंगे और अपने चित्त को शुद्ध करेंगे और मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे, इसलिए आए। तो पहले से भी जो रह रहे हैं उनके लिए और आगे भी जो आने वाले हैं उनको रखने में आश्रम के प्रबंध को इस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। ये पॉइंट आप अपने से बना के लिख लीजिए।
मानव आश्रम का जहाँ पर हम आश्रम लिखे आगे आदमी मानव नहीं, मानव है तीन चार लड़ाई जिसकी प्राप्ति की हो। एक आदमी लालटा लेकर जमीन पर घूम रहा था, अब क्यों जैसे लालटन लेकर मैं मानव की लालचा रही
हूँ,
मैं मानव से लाश कह रहा हूँ। हृदय तो मानव नहीं है, यदि मानव मानव है जिसको प्रयोग प्राप्ति के साथ लाश है गंदा है, हर एक आदमी मानव नहीं है।
खैर हम लोग ये सब कहे तो किसी को कहने जाएंगे, क्या जाने किसके भीतर अहम तो सबके भीतर है और उस अहम में जिंदगी और शक्ति की ज्योति और प्रेम का बूंद तो सब में है, तो हम काहे को कहने जाए। अपनी ओर से हम किसी को नहीं कहेंगे कि तुम मानव नहीं हो, तो हमारा काम नहीं है। अभी तो मैं केवल आश्रम के पास करने वाले लोगों को याद दिला रही हूँ कि यहाँ पर बसने हम लोग क्यों आए। अभी बाहर की बात छोड़ दीजिए, दूसरों की बात तो एक बात हो गई। अब से आगे से जो भी कोई साधक आश्रम में बात करने के लिए आना पसंद करे और पत्र लिखे और बात करे तो सब आश्रम प्रबंध के निश्चिंतक और पुराने लोगों को पद और ना पद ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब सेवा ही के लिए है। तो सब मिलकर के इस विषय पर विचार कर लीजिएगा और जो भी कोई इस दृष्टि से सचेत मालूम हो तो उसको रखना चाहिए और वो भी समय जगह की सीमा तो खत्म हो जाएगी तो भी हम नहीं कर सकेंगे। गौशाला बन रहा था तो सुखदेव जी महाराज ने हम सब लोगों में से बहुतों से पूछा, कुछ लोग कहते थे कि भाई ऐसी गौशाला बनाओ तो सब लोगों की सेवा बने। बाल मंदिर में बच्चों को रखने की बात हुई तो महाराज जी ने सब लोगों से पूछा कि भाई कैसा कैसा करोगे, तो हम लोगों का मत जानना चाहते थे। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों ने मत प्रकट किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे गौशाला में कुछ लोगों का ख्याल था और खास करके उन भाई का जिन्होंने संकल्प पैदा किया और सबसे पहले कुछ धनराशि लगाई कि भाई दूध न देने वाली और अपाही और ऐसे गुहों की सेवा होनी चाहिए जिनकी कोई नहीं करता है, दूध वाली बहुत सब लोग करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने एक दृष्टिकोण दिया क्योंकि उनकी उनकी दृष्टि जो है ना वो उत्थान की तरफ है सब खुद है। तो महाराज जी ने एक दृष्टिकोण ये दिया कि देखो मानव सेवा संघ की गौशाला जो होगी तो अच्छे अच्छे नस्ल की गायों के विकास के लिए होगी, तो ऐसा नहीं कि अलूल जलूल और जैसे पैसे देकर के भागो और बहुत ही जिनकी सेवा कोई नहीं करता है उनकी हम करेंगे, तो वो भी है, वो कोई मना ही नहीं है, वैसी सेवा भी हो सकती है, लेकिन अपना ध्यान तो इस बात पर रखना है कि ये अच्छी नस्ल की गायें बढ़ती जाएं उनकी वृद्धि हो, तो हम ऐसा करेंगे। तो आपको याद होगा शुरू शुरू में हरियाणा से बहुत बड़ी बड़ी और बड़े अच्छे नस्ल के गाय और बच्चे खरीदे गए, तो हम लोग समाज नहीं सके अथवा इस क्लाइमेट में वो लोग फिट नहीं रह सके ये बात दूसरी है, लेकिन प्रयास है। और बाल मंदिर के बच्चियों को रखने की चर्चा जब चली बाल मंदिर खुलने के समय कि भाई कैसे कैसे रखना चाहिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये नहीं कि अनाथ लड़कियां जिनके माता पिता नहीं है जिनके पालन करने का लिए कोई नहीं है ऐसे सब इकट्ठा कर लो, तो नहीं, तो लड़कियों को रखो तो ऐसी ही इंटेलिजेंस और जागृत बुद्धि की लड़कियों को रखो जो कि खास प्रकार का वायुमंडल जो हम देना चाहते हैं इसमें से अधिक लाभ उठा सकें, समझ में आया। गौशाला खोलने में वो दृष्टिकोण व्यक्ति से अच्छी मंदिर की गायों की संख्या वृद्धि हो जाए और बाल मंदिर चलाने में वो दृष्टिकोण कि अब एक से एक अच्छी मेधावी लड़कियों को रखो जो कि अच्छे संस्कारों से लाभ उठा सके। तो ये सब उदाहरण मैं दे रही हूँ और आप सभी आश्रमवासी लोग हैं, सबको इस प्रकार का दृष्टिकोण डेवलप करने में मदद मिलेगी। और इसी प्रकार से इस आश्रम में उन जागृत साधकों को स्थान दो जो कि साधना के द्वारा अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने में सचेत हैं। समझ में आ रहा है? एक बात ये हो गई। अब आज की जो दशा है, किसकी कैसी दशा है, हर भाई बहन अपने आप से अपनी जानकारी करे और अपने आप से अपने को देखे। और एक मंत्र जो मुझे सूझ रहा है वो मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग अपने पर लागू करके देखिएगा कि प्रातः काल संध्या समय व्यक्तिगत सत्संग के समय एक बात भीतर से सोच के देखना कि अच्छा ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग, बहुत जरूरी बात है, ये सोच करके देखना कि आश्रम में बस करके मैं आश्रम का उपयोग अपने लिए कर रहा हूँ कि अपने जीवन का उपयोग आश्रम की सेवा के लिए कर रहा हूँ। ये एक खास बात, सोचने से भीतर से मुझे ऐसा लगता है कि घर की गृहस्थी में रह करके हमने जो किया था, भाई के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करेंगे कि दुख में भाई काम आएगा और पैतृक संपत्ति है तो वो उस भाई के घर में उतना खर्चा हो रहा है तो हमारे घर में भी उतना ही होना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, कम काय को होगा तो दो भाई थे, दो जेठानी देवरानी थी, एक के दो बच्चे थे, एक के चार बच्चे थे, तो हर समय उस घर में झंझट रहता था कि इनके तो चार बच्चे इतना खाते हैं तो हमारे दो में भी उतना खर्च जरूर हो जाना चाहिए। तो ये सब जो हम लोगों ने घर गृहस्थी में किया कि जितना दिया उससे अधिक लेना पसंद किया, तो उसी के परिणाम से हमारे लिए जन्म मरण का बंधन बन गया, राग से भर के, द्वेष से भर के और सुख भोग की तृष्णा से भर के हम निश्चिंतता की सांस ले नहीं सके, निश्चिंतता से मर नहीं सके और जन्म मरण के बंधन को काट नहीं सके। अब प्रभु कृपा से, संत कृपा से, जीवन के मंगलमय विधान से आश्रम में बात मिला है तो हर साधक को ये सोचना चाहिए कि आश्रम में रह करके हम आश्रम को अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, आश्रम की सुविधाओं को, आश्रम के स्थान को, आश्रम की उदारता को, मानव सेवा संघ के सिद्धांत को हम अपने उपयोग में ला करके घर से अधिक सुविधा और फ्रीडम हम यहाँ उपभोग कर रहे हैं कि साधना की दृष्टि से मेरे पास जो कुछ है वह आश्रम की सेवा में लगा करके अपना चित्त शुद्ध कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। अगर ऐसा लगता है कि दूसरे लोग तो सब तरह से आश्रम का उपयोग कर रहे हैं तो हम ही क्यों पीछे रहें, तो अच्छी बात है भाई, मानव सेवा संघ की तो उदारता इतनी है कि शासन होगी नहीं, कठोरता होगी नहीं, दबाव डाला नहीं जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर दूसरे लोग दिख रहे हैं कि वो तो बैठे बैठे आलस में दिन काट लेते हैं और उनको भी खाना पीना सोना सब मिल जाता है तो हम परिश्रम करके क्यों खाएं, हम भी उतनी ही आराम से आलस में दिन काट करके और उतनी ही सुविधा लेकर के रहेंगे। अगर ऐसा कोई सोचे तो ऐसा सोचना उसका किसी भी प्रकार से कल्याणकारी नहीं होगा। अगर ये बात आपको जनते तो प्रातःकाल व्यक्तिगत सत्संग के समय उठते ही ध्यान दीजिएगा और देखिएगा और सोचिएगा कि आश्रम का और मानव सेवा संघ की उदारता का और संत के परिश्रम के परिणाम का उपयोग मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि जो कुछ गति खुशी शक्ति ले करके रिटायरमेंट के बाद आदमी के पास बचता गया है, सारी जिंदगी निकल गई, सब परिश्रम किया, सब बाल बच्चों में लगाया, परिवार में लगाया, सब उपार्जित किया हुआ धन परिवार वालों को दिया और उसके बाद बची खुशी मामूली रह गई तो लेकर के आश्रम में आए। तो ध्यान देना है इस बात पर कि बची खुशी जो लेकर के आए तो उसका भी उपयोग हम सेवा के लिए आश्रम की मदद के लिए कर रहे हैं कि आश्रम से स्वयं अधिक से अधिक मदद लेने की सोच रहे हैं और जहाँ मौका मिले वहाँ ले रहे हैं और लेने में बाधा पड़े तो क्षुब्ध हो रहे हैं और दूसरों की आलोचना कर रहे हैं कि मन ही मन कूद रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए अपने को, मैं किसी व्यक्ति से नहीं करती हूँ और किसी को आदेश नहीं देती हूँ। आश्रम वासी साधक हम सब लोग हैं और आश्रम का आश्रय हम लोगों ने इसीलिए लिया है कि भाई ममता से मुक्त वायुमंडल में रह करके चित्त को शुद्ध कर सकें। तो चित्त शुद्धि का उपाय ये है और अगर ये सोचें कि भाई हम तो मानव सेवा संघ में रहने को मिला है तो हम तो यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं तो प्रबंधक हमको करने का परमिशन दे तो हम रहे, नहीं तो आज ही चलेगा। ये सूचना मेरे पास आई एक ठहरे हुए साधक के बारे में कि आकर के उन्होंने प्रबंधिका से ये कहा कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं और अगर आप हमको सुविधा दीजिएगा तो हम रहेंगे, हमें तो कल ही चले जाएंगे। इस बात से वही चली जाइए, आप बड़ी खुशी से। तो मैं अंदाजी बात नहीं कह रही हूँ और किसी व्यक्ति की आलोचना के लिए नहीं कह रही हूँ और कोई मेरी बातों को किस अर्थ में लेगा उससे मैं डरती भी नहीं, वो मुझे डर नहीं है। कोई कैसा उसको रंग देगा, कोई कैसा उसको कलर देगा, कोई किस प्रकार से इंटरप्रेट करेगा और कैसे इन बचनों में भूल निकालने की चेष्टा करेगा उससे भी मुझे कोई डर नहीं है। उसको जो करना हो तो बेहतर है, सच्ची बात है और हितकर बात है और मुझे आपने बुला के बैठाया है कि कहो तो जो मुझे सोचता है मैं जरूर कहूंगी। तो सोचना चाहिए इस ढंग से, एक बार ये हो गई बस एक ही लाइन, मैं आश्रम का उपयोग कर रहा हूँ कि अब मैं आश्रम के लिए उपयोगी हो रहा हूँ, दो ही बात काफी है जी, बहुत है। अब इस ढंग से सोचना, अगर आश्रम का उपयोग अपने लिए करोगे, अपनी संकल्प पूर्ति के लिए करोगे, जो सेवा करने को हाथ में मिला है उस सेवा के बदले में बहुत सारा अपना सब एडवांटेज पसंद करोगे तो बंधन और अधिक सुदृढ़ होता जाएगा। आज सवेरे जब इस सभा में आने की बात थी तो मेरे ध्यान में आया, बहुत अच्छी बात कही मुझे, रांची में एक स्वराज के कार्यकर्ता व्यक्ति थे, स्वामी जी महाराज के बहुत प्रेमी हो गए थे पीछे और आंसुओं से पति पत्नी रोते थे और कहते थे कि बापू को जब गोली लगी तो हम लोग अपने को सोचने लगे कि अनाथ बालक हो गए, अब कोई माँ बाप मिलेगा नहीं। स्वामी जी महाराज को जब से देखा तब से ऐसा लगता है कि बापू फिर हमको देखने के लिए आ गए, ऐसे प्रेमी लोग थे। तो उन्होंने अपने बाप का वर्णन किया तो कहा कि चार भाई हम लोग हैं और चारों भाई सयाने हो गए, सबका ब्याह हो गया, सबकी गृहस्थी बाप ने सजा दी, दुकान उकान कर ये व्यापारी वर्ग के हैं, बाप ने चारों को कर दिया सब और दुकान मकान चारों भाइयों को बैठा के और उसके बाद कहा कि अब एक पैसा मैं अपना तुम लोगों को नहीं दूंगा। और वो बहू जो है, जो स्वामी जी की बहुत प्रेमी है, तो वो तो हंसती कहती कि ससुर ने कहा कि बहुओ सब सोना हीरा जो कुछ यहाँ रखा था तुम्हारी सास का तुम्हारे पास दिया हुआ वो सब ला के हमारे पास इकट्ठा कर दो, अब तुम्हारे पतियों को मैंने समर्थ कर दिया, अब यही कमा के बनाई वो सावित्री बहन जुटे और कहे कि हमारा मंगल सूत्र भी ससुर ने ले लिया नहीं रखा उसने क्यों ले लिया तो गांधी जी को देना था स्वराज के देश के काम में लगाना था तो सब इकट्ठा करके ले लिया और गांधी जी को दान करके दे दिया कि ये सब जाएगा देश की सेवा में और तुम्हारे पति अब कमाएंगे और जो पहनाएंगे तो पहने लगेंगे उसको खाना तो इसे क्यों की चर्चा में नहीं करती हूँ भाव की बात थी उस समय देश की हालत वो थी लहर लहर था एकदम एक एक आदमी ने रक्त निछावर करने को लिए तैयार थे लोग तो सोना ही रहकर क्या मूल्य था तो हमने सोचा कि अपनी कमाई का दुरुपयोग तो कोई करता ही नहीं है अपनी कमाई का जो पैसा होता है परिश्रम पूर्वक जो कमाता है उसका दुरुपयोग कोई नहीं करता है जो बाप बहुत संपत्ति इकट्ठा कर देते हैं उनके लड़के बच्चे नालायक होकर बाप की कमाई का दुरुपयोग करते हैं वो दुरुपयोग एक सीमा के भीतर सीमित रह जाता है एक बाप की कमाई चार बेटे नुकसान करेंगे और क्या करेंगे तो हमारे ध्यान में आया कि संत की सद्भावना संत का परिश्रम जो भी कुछ कहा जाए एक उदाहरण मुझे याद है शुद्धबोध माता जी के सामने की बात है आश्रम अभी बन ही रहा था स्वामी महाराज कहीं से यात्रा करके आए हम लोगों ने बॉक्स को खोला संभालने लगे कि भाई संभाल करके रख दो और हम जी के कपड़े उपड़े जो कुछ उसमें देना है दे करके रख दो यात्रा के लिए तो उसमें से कपड़े निकाले हम तो पुराने कपड़े का एक टुकड़ा था उसके एक कोने में लाल मिर्चा के दो टुकड़े और इतना सा नमक गांठ में बांधा हुआ था तो डॉक्टर मदन और हम दोनों कर रहे थे काम तो मदन तो एकदम रोने लगा झटझट दीदी दीदी पिताजी का हाल देखो दीदी जो नमक और मिर्चा बांध के लाए हैं बाहर खूब याद दिलाया मैंने इसलिए कि यह आश्रम आपके पुरुषार्थ से नहीं चल रहा है संत के हृदय में एक बड़ी जोरदार भावना थी कि एक ऐसा आश्रम हो कि जिसमें सांप्रदायिकता और मतभेद और ये सब कुछ छोड़ करके सचमुच कोई सचेत साधक है तो वो रोटी के फिक्र से निश्चिंत होकर के सत्य की खोज कर सके इस आश्रम की स्थापना का ये आधार है कि अगर सचमुच कोई साधक सत्य से मिलना चाहता है ईश्वर से मिलना चाहता है तो उसको भिक्षा करने के लिए चिंता न करनी पड़े जाना न पड़े शांति से बैठ करके और सत्य की खोज कर सके एक ऐसा इंतजाम मैं करूं तो रोटी हो और दूध हो ये उनके भीतर की कल्पना थी कि ऐसा हो जिसमें कि सचेत साधक जागृत होकर के और सत्य की खोज कर सकें इसके लिए उन्होंने बताया तो ये आश्रम चल रहा है यहाँ अन्न जल वस्त्र और दवा मिल रही है तो उस संत के उस प्रभु भक्त की प्रेरणा से मिल रही है उसकी सद्भावना काम कर रही है अब जब कभी मेरे सामने ऐसी कोई बात सुनने को आती है कि अन्न नुकसान हो रहा है कि कोई चीज किसी वस्तु का अपव्यय हो रहा है कि आश्रम की सामग्री गड़बड़ हो रही है कुछ भी किसी भी प्रकार से मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रही हूँ नाम लूंगी नहीं क्योंकि ये सब हमारी सुनी हुई बातें हैं जानी हुई बातें नहीं है जानने की जिम्मेदारी यहाँ के रहने वालों पर है और जो लोग आंख से देखते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने को भी संभालें और साथियों को भी संभालें और प्रेम पूर्वक संभालें बिना अभिमान के संभालें बिना लड़ाई किए संभालें देखने वालों का काम है मेरा काम केवल इतना है कि मैं सुझाव दे दूं कि तुम साधक होकर के अगर आश्रम की वस्तु को किसी भी प्रकार से बिगाड़ो अथवा आश्रम की वस्तु के बल पर तुम उपकारी और दानी बनो तो तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा कल्याण। चाहे कितना ध्यान करो और चाहे कितना पाठ करो और चाहे जितना भजन करो और चाहे जितना एकादशी का व्रत करो, नहीं होगा कल्याण। एक पैसा भी अगर बिगाड़ते हो, खराब करते हो, जहाँ रहती हूँ मैं उस जगह पर बहुत से बंदर हैं, तो कभी कभी मुझे दिखता है रोटी छत पर पड़ी हुई सूख रही है, तो बंदर तो रसोई घर के बर्तन में से नहीं ले गया होगा। इसीलिए वो नमक मिर्च की बात आज मैंने सबके सामने कर दी। कहाँ कहाँ से कुली अगर 14 आने की जगह पर 1 रुपया मांगता है, तो त्रिगुणा तीत पुरुष जिनको संसार से लेश मात्र भी संबंध नहीं था, वो 14 आना दिलवाएंगे, 16 आना नहीं देंगे, 2 आने के लिए बैठ करके खड़े हो करके कुली से 10 मिनट बात करेंगे। तो क्या समझा है हम लोगों ने? तो एक भी अनावश्यक पैसा जो खर्च करता है, मैं कहने जा रही थी कि बाप की कमाई संपत्ति का अपव्यय करने का उतना दोष आदमी को नहीं लगता होगा जितना संत की कमाई का अपव्यय करने का लगेगा। बाप की कमाई को बिगाड़ने में और भाइयों का भी डर रहता है, मारपीट हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, झगड़ा झंझट हो जाएगा। मानव सेवा संघ की उदारता में इतना भय नहीं है, तो निर्भयता का ये उपयोग हम लोग करें तो उससे बढ़कर के और कोई नुकसान की बात नहीं है। उसको नहीं करना चाहिए, किसी को कभी नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति जो साधकों की सेवा के लिए आई, उसमें से दान करने का मेरा क्या हक है, उसको दूषित करने का मेरा क्या हक है, उसको अब क्या क्या मैं कहूँ, सब अपना अपना अपने सब लोग सोचेंगे। तो दूषित करो तो अपने लिए असाधन की जंजीर कस रहे हो, बांध रहे हो। प्रेम करना, सहयोग देना, प्रार्थना करना, दुखी होना, परपीड़ा से पीड़ित द्रवित हृदय से प्रार्थना करना, परमात्मा को पुकारना, मुकदमा करना और झगड़ा करना नहीं। अब विधि विधान में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए कि सबके पास अकल है और सबको अपने अपने कल्याण की चिंता है। इसी से हमारे दिल में बहुत संतोष आ जाता है, धीरज आ जाता है कि हम सब लोग सयाने हैं, अपने अपने कल्याण की चिंता सबको है। तो सयाने होकर के भी सयानेपन से लाभ उठाओगे तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, सयाने होकर के सयानेपन का लाभ नहीं उठाओगे तो कोई नहीं करा सकेगा। ये है। तो जो भी कुछ है, निकटवर्ती जन समुदाय के बीच में रहना पड़ा। मैं तो कहती हूँ कि हम लोगों में से एक एक आदमी अगर कष्ट सह करके भी गलती नहीं करेंगे, खुद अपने गलती नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, केवल इस व्रत के लिए हम लोग तैयार हो जाते तो वातावरण बदल जाएगा। तो कभी कभी हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे वाह, आपने उनको नहीं रोका तो हमको काहे रोक रहे हैं। हमको तो बड़ा दुख हो जाता है। हमने कहा वो गड्ढे में जा रहा है तो चलो हम भी तोड़ के जाएं, कि वो गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे। कोई नया नया आदमी का काम नहीं है। दूसरा दुरुपयोग कर रहा है तो हम क्यों न करें, दूसरा असाधन कर रहा है तो हम क्यों न करें। भयानक की बात नहीं है। दूसरे जो अच्छाई कर रहे हैं उनकी उनकी अच्छाई से मैं उत्साह लूँ, दूसरे जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनके निस्वार्थ सेवा से मैं उत्साह लूँ, दूसरे जो सचेत होकर भजन में भगवत भक्ति में शांति में उदारता में प्रेम में लगे हुए हैं तो उनको देख करके हम इन सब बातों में आगे बढ़ें, उन्नति का तो ये रास्ता है। दूसरे लोग अच्छाई में क्या क्या कर रहे हैं, सब में अच्छाई तो है ना, खाली बुराई बुराई तो नहीं है, बहुत सी बातों में बहुत सी अच्छाइयाँ आपके साथ हैं, तो सब एक दूसरे की अच्छाई देख देख कर सीखें कि उनके बोलने का ढंग कितना अच्छा है तो हम भी अच्छा बोलें, उनमें दूसरों को मदद करने की कितनी प्रवृत्ति है तो हम भी मदद करने की सीखें, उनमें थोड़े में अपना निर्वाह करने के लिए कितना अच्छा आदर्श है तो हम भी वैसा सीखें। तो आखिर इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं सब बुराई की खान तो नहीं है, बहुतों में बहुत अच्छाइयाँ हैं, तो हम लोग सब एक दूसरे की अच्छाई देख देख करके आगे बढ़ने को आरंभ करें। इसीलिए मैंने बहुत सोचा तो मेरी समझ में ये आया, अपने लिए तो मैंने तय कर लिया है, आप भाई बहनों को भी मैंने ये सलाह दी कि जब कभी आश्रम की पारिवारिक गोष्ठी बैठा हो तो किसी को मत कहो कि तुम में क्या बुराई है और तुम क्या गलती कर रहे हो, अपने में क्या बुराई है हर साधक जानता है, तो सबके प्रति स्नेह रखो सद्भाव रखो सबका कल्याण मनाओ, और मना करने की जरूरत पड़े तो खूब प्रेम पूर्वक खूब आत्मीयता से मना करो और इतने बल से मना करो कि भाई ये गलत काम तो हम आपको करने ही नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी माता हैं। एक बार ऐसी कोई बात हो गई थी, एक महिला जो स्वामी की शरण में आ गई थी रह रही थी यहाँ, तो उसके पति लेने के लिए आए, कुछ ऐसे पारिवारिक खटपट हो गया था तो वो महिला जाना नहीं चाहती थी, तो स्वामी जी ने कहा था कि हम यहाँ रख के जा रहे हैं तो जब तक हम आएंगे तब तक इसको यहाँ रखना, फिर परिवार के लोगों से बातचीत करके इसको विदा करेंगे। तो उसके पति आ गए पीछे ही में और कहने लगे कि हम ले जाएंगे, तो वो कह रही थी कि हम अभी नहीं जाएंगे, स्वामी जी कह के गए हैं ऐसा ऐसा, आएंगे तब जाऊंगी। तो पति में इतना उतावलापन था कि उन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, और जोर डाल करके उसको ले गए। तो स्वामी जी महाराज आए तो बड़ी माता जी थी और लोग भी थे, बहुत सुखी हुए, कहने लगे महिलाओं का आश्रम और महिला को मैं रख के गया था, हम न देने की तो बात ही नहीं थी। तो सुधगुण माता जी से उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि तुम्हारे देखते देखते वो ले गया, तुम रास्ते में लेट क्यों नहीं गई, तुम्हारे जिंदा रहते रहते ये काम हो कर गया, तुमको रोकना चाहिए था नहीं भेजना चाहिए था, और बहुत सी बातें बताई और सब कुछ कथा करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना मैं कहती हूँ कि भूल करने वाले को देख करके भूल करना ये मेरा धर्म नहीं है, अच्छाई करने वाले साधकों को देख करके अच्छाई सीखना ये अपने लिए कल्याण की बात है। तो सबके पास कुछ न कुछ अच्छाई है, अच्छाई को देखते जाइए, अच्छाई सीखते जाइए, अच्छाई का अनुसरण करते जाइए, और अपनी बुराई आप देखिए और दुखी हृदय से सब भाई बहनों का कल्याण मनाना चाहिए। आपकी दृष्टि में अगर कोई बहुत ही गलत साधक दिखाई देता हो तो भी आपके हृदय में उसके लिए बड़ी गहरी पीड़ा होनी चाहिए कि हे भगवान इसको सदबुद्धि दे दो ये संभल जाए। मैंने बहुत सोच के देखा तो हमने कहा कि ये तो अपने लिए बड़ा नुकसानदेह है कि हमेशा हम साधकों के की त्रुटियों को देख देख करके उसके बारे में सोचते रहे, तो बहुत नुकसानदेह बात हो गई, और जैसे जैसे हम उसको बुरा समझेंगे अपने में सद्गुणों का अभिमान बढ़ता रहेगा, ये तो इतना गलत करने वाला है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, इसमें तो इतनी त्रुटि है, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, तो दूसरों की बुराई देखते देखते अपना ही मामला चौपट हुआ। तब मैंने सोचा कि तब क्या करना चाहिए, तो महाराज जी की वाणी उनसे खोज ढूंढ करके ये रास्ता मैंने निकाला। हमारा हम किसी को कहेंगे नहीं कि तुम्हारे में ये बुराई है, हम ये कहेंगे कि भैया बुराई रहित होने के लिए इस आश्रम में आए हो, ये साधन धाम तुमको पवित्र करने के लिए है, ये संत धाम तुमको सत्य और परमात्मा तक पहुंचाने के लिए है। अगर यहाँ बैठ करके अपनी बुराई को बढ़ावा देते हो तो मैं कहती हूँ कि गृहस्थी में रह करके बुराई करने से जितना नुकसान होता था, इस संत धाम में बैठ के बुराई करने से उसका सहस्त्र गुना अधिक भार अपने पर लग जाए। तो हम अपने को संभालेंगे तो मानव सेवा संघ पर एहसान नहीं करेंगे। सेवा करेंगे तो आश्रम पर कोई एहसान नहीं करेंगे कि हमने बड़ा काम किया है, हमने बड़ा संभाला है। हम तो कहते हैं कि संत ने ऐसा अवसर बना दिया कि बची कुची पूंजी भी तुम अर्पण करो तो उतना ही देने में वही जीवन मिलेगा जिन्होंने जन्म से ही सब समर्पण किया हो। बड़ा मंगलकारी विधान है। तो इन सब बातों को इन सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और किसी की बुराई को एक्सेंचुएट करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्यार पूर्वक संभाल करके चलना चाहिए और अपने अपने भीतर अगर साधना की चेतना बढ़ गई तो अपने आप से ही सब त्रुटियां खत्म हो जाएंगी। तो हर समय दूसरों के दोष का उल्लेख करते रहना, ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बिगाड़ दिया, ये अपने चित्त को दूषित करना है। और संघ की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, कलकत्ते में नहीं धनबाद से ट्रेन पकड़नी थी और पूर्णिया में सत्संग था। करतेल वालों ने हमको एक दिन पहले पूर्णिया से शाम के समय बुला दिया, ले आए कार में बैठा के। भोर में ट्रेन है तो भोर में इतनी लंबी यात्रा ठीक नहीं रहेगी आज के लिए। तो मैं आई, कुछ लोग करतेल से, कुछ लोग धनबाद से, लोग पूर्णिया में आए थे सत्संग में शामिल होने के लिए। तो एक सज्जन आए मेरे पास बैठे, तो 101 रुपया उनका देने का मन था, तो उनकी स्त्री का मन था कि और ज्यादा दिया जाए, तो उन्होंने कुछ संकेत किया होगा। तो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, मैं ऊपर बैठी थी। तो पति ने कहा कि अरे भाई तुम बोलो तो कितना देना चाहती हो, हम उतना देंगे, कहीं नहीं देंगे। तो फिर आपस में जैसा उन लोगों का चला गया, 251 रुपया उन्हें निकाला, निकाल करके हमारे पास लाए। तो रख करके कहने लगे कि माता जी ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ और आप जिस तरह से इसको सेवा कार्य में लगाना चाहें लगा दीजिए। और हंस के कहते हैं कि आपका भी आपको दिया हुआ पैसा जो है तो बढ़िया से बढ़िया काम में लगेगा। ऐसा कह के तो वह आदमी चला गया। हमने कहा उसने तो पुण्य कमा लिया, अब हमारे पर वो भार डाल गया कि अगर उस 251 रुपये में से एक भी नया पैसा मैं बेईमानी करूँ, इधर उधर करूँ, संस्था के काम में न लगा करके कुछ अपनी रुचि पूर्ति में करूं तो कितना बड़ा अपराध मेरे लिए बनेगा। वो आदमी तो बड़ा जबरदस्त काम कर गया, खड़ा होकर के हमारे सामने रख के सबसे चला गया कि माता जी आपको दिया हुआ तो सब बढ़िया काम में लग जाएगा। हम सबके पति तो बिल्कुल चले गए। तो हमारे तो दिल पर ऐसे स्टैंप लग गया। हमने कहा इस आदमी ने तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, उन्हें दे दिया और ये विश्वास से दे दिया कि मानव सेवा संघ को दिया हुआ अच्छे काम में लगेगा। अब अगर हम उसमें से एक नया पैसा भी इधर उधर करें तो सोचो कि हमारे लिए नरक में भी कहीं जगह होगी। कितनी बड़ी बात। तो शरीर वैसा ही है जैसा कि पैसा है। शरीर का उपयोग भी पूरी तरह से साधना के लिए, सेवा के लिए हो तो चित्त शुद्ध हो, नहीं तो महाराज मामूली बात है, जन्म जन्मांतर का इतना जबरदस्त विकारों का प्रभाव, मोह का प्रभाव, लोभ का प्रभाव, काम क्रोध का प्रभाव, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कितने कितने ऊंचे स्टेज पर जाकर के पछाड़ देता है, कोई सहज बात है क्या? तो सहज बात नहीं है। और इतना बड़ा पुरुषार्थ करने के लिए अब ये समय जो हम लोगों को मिला हुआ है वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, देखो पांच मिनट में ये घंटा भी खत्म हो जाए। खूब सावधानी, परमात्मा कभी भी नाराज नहीं होते हैं, संतजन कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अरे भाई, जब प्रभु हजार प्रकार के किए हुए अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार है, तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि दस भूल अपने में रखो और दूसरे की एक भूल देख करके उसको क्षमा करने के लिए हृदय नहीं रखते हो? ये क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अपना अहम बढ़ता है, अपना अभिमान बढ़ता है, अपना कल्याण होता है। हो सकता है, महाराज जी की वाणी है, हो सकता है कि जिसने भूल की उसके भीतर पश्चाताप की अग्नि जल उठे, तो तुम्हारे से पहले पवित्र होकर के वो परमात्मा के पास पहुंच जाएगा और तुम उसकी भूल देख करके अभिमान लिए बैठे रहोगे तो पीछे रह जाओगे। तो हम लोग सब अभिमान गलाने आए हैं और दूसरों को देख देख करके उनके सद्गुणों का अनुसरण करने आए हैं, अपना कल्याण करने आए हैं, और जो कुछ लाए हैं अपने पास, जो 50 रुपया रह गया है उसके द्वारा सेवा करके अपने को शुद्ध करने आए हैं। बस अब आज तो इतनी बात करके बस करती हूँ, और जो भी कुछ कहा मैंने उसकी कोई भी बात किसी भी भाई बहन को अच्छी ना लगी हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ। इस भावना से ही मैंने जो कुछ कहा है तो कहा है, और कोई बात आप लोगों को ना पसंद आई हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी भूल कर करके उसको छोड़ दीजिएगा और अपना कल्याण जिसमें लगे तो कीजिएगा। सब मिलकर के सबके प्रति सद्भाव रखो। हे प्रभु, हम सब भाई बहनों को सद्बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हम सब भाई बहनों को सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे स्वामी जी महाराज, आपने प्रभु के समर्पित किया है तो हे महाराज, हम सब लोगों को उसके योग्य बनाइए कि वे अपना प्रेम रस इस छोटे छोटे पात्र में भी भर दें। ऐसी प्रार्थना करते रहो। जिस पर दृष्टि पड़े उसकी भूल को मत याद करो, उसके कल्याण को हृदय में ले करके अपने संग उसके लिए भी प्रार्थना करो। जिस पर दृष्टि पड़े, तुम्हारे मत को मानता है कि नहीं, तुम्हारे पक्ष में बोलता है कि नहीं, तुम्हारे भलाई बुराई सबका समर्थन करता है कि नहीं, तुमको सहयोग देता है कि नहीं, तुम्हारे काम आता है कि नहीं, मत सोचना। सब साधक है, सब प्रभु के हैं, सब स्वामी जी महाराज के हैं, सबको अपना कल्याण अभिष्ट है। हे प्रभु, सबका कल्याण करो। हे प्रभु, सबका कल्याण करो। अब इसी प्रार्थना, इसी भाव को लेकर के थोड़ी देर के लिए शांत।